भाई, खुदा तुम्हारा भला करे।
बरात अली भाई,
हाँ
ला वो मुझे दे दो। बहुत
गाड़ी की चाबी निकाली।
मैं कह रहा हूँ तुम खुद ही जाओ, मसाइल खुद तुम्हारे हाथों हलों तो बेहतर रहे।
मुस्लिम भाई, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि उसके मसाइल हल कर सकें। तुम्हारे लिबास लेकर हमारी बात बेहतर सुनी जाएगी। आ जाओ आ जाओ।
तजारती अंदाज में बात करने लगे
तुम। चलो तो सही, बाद में देखेंगे क्या होता है।
यार ऐसी जगहों से मैं डरता हूँ।
अरे भाई तुम चलो तो सही, चलो
तुम चलो।
मैं अपने दामाद को उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ।
ये तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है, समझे बरात अली?
ऐसे दामाद का क्या करना जो मुसीबतों में डालता रहे।
मैं उसको सलाम
वालेकुम। वालेकुम सलाम।
नहीं मेरे भाई, नहीं हो सकता है। मैं मुर्गियों के ऊपर दो हमसायों की जंग की खातिर पुलिस को नहीं भेज सकता हूँ। आप लोग आपस में मामला सुलझा लें, रिश्तेदार भी तो हैं, किसी तरह आपस में सुलह कर लें। हाँ, खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा मौलाना साहब, आप क्या फरमा रहे थे?
हम लोग हाजी शहीदी साहब के शागिर्दों में से हैं। आपको इसलिए जहमत दी कि आप जरा देखें कि अगर मुमकिन हो तो हम तुलाब एक जमानत नामा बनाकर इस पर दस्तखत करें ताकि ये मुश्किल हल हो जाए और कोई मसला ना रहे।
नहीं, ये नहीं हो सकता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। अगर सिर्फ दस्तखत से ही फातेही साहिबा को आजाद करा सकते थे तो हाजी साहब के दस्तखत काफी थे, सिर्फ कागजात।
माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास भी एक बाइक है और शेख के पास भी एक बाइक है, हम उसके कागजात ला के रखवा सकते हैं।
नहीं, जायदाद के कागजात।
अलबत्ता इन्होंने मजाक के तौर पर कहा है।
हाँ, मैंने देखा कि माहौल बहुत संजीदा है तो सोचा कहूँ, मजाक कर रहा था
जी। बहरहाल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, सिर्फ जायदाद के कागजात, वो भी कोर्ट ले जाने होंगे। और हाँ, आप बाकी तुलाब की तसल्ली के लिए उनसे कहें कि जमानत नामे और दस्तखत वगैरह के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
जी
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम।
वही क्यों चक्कर काट रहे हो, कुछ करो, जल्दी करो।
कर रहा हूँ।
रात होने को आई। इस्माइल
जी,
जाओ जल्दी से ट्रे उठा कर लाओ और जल्दी से टमाटरों को गाड़ी में भरो।
अच्छा।
जल्दी करो।
जी जा रहा हूँ।
वही रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। अरे वही रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ आगे मत बढ़ो। सुन नहीं रहे हो क्या? क्यों ऐसा कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या? सारे टमाटरों को रौंदाना, समझ में नहीं आ रहा क्या? ओहो,
सलाम अकबर साहब।
क्या कह रहे हो, मुझे यहाँ सुनाई नहीं दे रहा है। बोला ना, नहीं सुनाई दे रहा है।
आया आया।
ये लोग काम नहीं करते।
सलाम अलैकुम। सलाम अकबर साहब।
अलैकुम सलाम। इसको जरा पकड़ो।
मैं कंपनी चला गया था अपनी किताबें लेने के लिए, देखा कि मोहम्मद हुसैन की कंपनी को सील कर दिया गया है। मैं मजबूर होकर मदरसे चला गया, देखा मदरसे में भी हालात ठीक नहीं है।
पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है
जी। क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ अकबर साहब? क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ? वो जो शहीदी साहब की बहू है और हाजरा की दोस्त भी है, उन्हें एक मसला पेश आया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। असल में कोई खास वजह नहीं है, एक गलत फहमी की बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कहा है कि उनकी जमानत के लिए जमीन वगैरह के कागजात चाहिए ताकि उनको रखवा के उनको आजाद किया जा सके।
सुन रहा हूँ, तुम इसको पकड़ो
जी।
वो मुझे दो, कुछ काम करो, बेलचा चलाओ
जी। उन बेचारी का सिर्फ एक ही मालदार रिश्तेदार है और वो है मिर्जाई साहब, जो कागजात रखवा के उनको निकलवा सकते हैं। वो भी इत्तेफाक से मौजूद नहीं है शहर में, सफर पर गए हैं वो।
खुदा सब कैदियों को आजादी दे
इंशाल्लाह। अगर हो सके तो उनके लिए आप एक मेहरबानी कर दें।
मैंने बहुत से खुदा के बंदों के लिए मेहरबानी की है, अब मेहरबानी की जरूरत नहीं रही, समझे?
अकबर साहब, ये फैमिली इस वक्त सख्त मुसीबत में है। आपके पास जमीन और बागात मौजूद हैं, अगर उनके कागजात लाके रखवा दें तो हाजी साहब की बहू को आजाद कराया जा सकता है।
बेटे, हाजी साहब की बहू का मुझसे क्या ताल्लुक है?
आप ऐसा ना कहें, हाजी साहब के इस इलाके के सब लोगों पर हक बनता है।
मुझ पर किसी का कोई हक नहीं है, मैं बचपन से ही अपने पाँव पर खड़ा हुआ हूँ, समझे तुम? अगर मेरा ये पाँव खराब नहीं हुआ होता तो तुम जैसे दामाद की जरूरत नहीं थी मुझे।
जी आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन क्या इसी हाजी साहब ने आप और हाजिया साहिबा का निकाह नहीं पढ़ाया और आपके बच्चों के कानों में अजान नहीं दी और आपके वालिद मरहूम की तलकीन नहीं पढ़ी? बताइए मुझे।
ऐ लड़के, तुम्हें मदरसे, हाजी साहब और उनकी फैमिली के बारे में सोचने के बजाय मुझसे किए गए वादे और उस पर अमल करने के बारे में सोचना चाहिए। तुम अपने काम पर ध्यान दो। क्या तुम्हें तुम्हारे उस्ताद ने नहीं सिखाया है कि सबसे जरूरी चीज अपने वादे पर अमल करना है?
जी आप ये काम करें, मैं वादा करता हूँ कि आपके सारे काम कर दूंगा।
अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारा मोहताज हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम इस बात को बिल्कुल भूल जाओ। मैं बिल्कुल तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ लड़के। चाहे तो मेरे पास काम करो, चाहे तो ना करो, लेकिन फिर कल से मेरी बेटी का ख्याल अपने दिल से निकाल देना, समझे? खत्म। अब कहाँ जा रहे हो?
हाँ, आज मुझे छुट्टी दे दे अकबर साहब।
अभी आए नहीं हो और जाना चाहते हो?
मैंने उनसे वादा किया है, वो लोग मुसीबत में हैं, उनके काम निपटा के कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा।
देखो देखो, अगर कल सुबह टाइम पर नहीं आए तो फिर कभी ना आना। मैं उसके बाद तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। एक ऐसा दामाद ढूंढूंगा जो मेरे काम आए, मेरा साथ दे, मेरा हाथ बटाए, समझे? अब तुम जानो। शैतान पर खुदा की लानत हो, सभी एक जैसे हैं।
सलाम।
सलाम।
हानिया बहन, तुम अंदर जाओ, अम्मी को तुमसे कुछ काम है। जाओ भी।
बाजी अपन नाराज होंगे।
ए, जाओ उठो, चलो अंदर जाओ। जाओ, शाबाश।
तुम ठीक हो हाजरा खान?
शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। माफ करना, उसके ऊपर मत बैठना।
क्या कुछ हुआ है? कुछ बात हुई है क्या?
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बरात अली। तुमने कहा था कि मियां बीवी को अपने मसाइल खुद ही हल करने चाहिए, लेकिन आज जब मैंने मायदा को देखा तो ठीक ही सारी बात कह डाली।
कोई बात नहीं,
तुम बहुत अच्छे हो बरात अली। हाजी शहीदी साहब को जब सब कुछ मालूम हुआ होगा तो उन्होंने तुम्हें बहुत डांटा होगा, और अब तुम सोच रहे होगे कि अमामा लगाऊं या नहीं।
डांटा तो नहीं, लेकिन अगर डांटते भी तो मैं बुरा ना मानता, क्योंकि हाजी साहब हमेशा मेरा भला चाहते हैं। हाजरा, क्या हुआ? खुदा के लिए रो मत, खुदा के लिए रो मत हाजरा। हाजरा,
अब तक तुम मुझे हाजरा साहिबा कहते रहे हो, क्या अब हाजरा सुनने के लिए मुझे रोना पड़ेगा?
अच्छा, इन बातों को किसी और वक्त पर छोड़ दो।
तुम भी हमेशा रंग में भंग डालते हो।
एक अहम वाकया पेश आया है, एक ऐसा मसला है जिसे सिर्फ तुम ही हल कर सकती हो।
क्या हुआ है?
तुम्हें मायदा साहिबा की कोई खबर है?
नहीं, बस इतना जानती हूँ कि ज़ाहिरन उसकी माँ के साथ उसके ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, मैं भी खुश।
नहीं, मसला ये नहीं है। मायदा साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्या कहा तुमने?
उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
गिरफ्तार कर लिया गया है, पर किया क्या उसने?
उन्होंने क्या किया था क्या नहीं, एक लंबी कहानी है। अहम बात यह है कि इस वक्त सिर्फ तुम ही उनकी मदद कर सकती हो।
मैं?
तुम और अकबर साहब।
हम कर क्या सकते हैं?
मेरे खाला साहब के पास करोड़ों का पैसा था, उसकी 6 बेटियां थीं, सबको 1-2 साल के अंदर अंदर ब्याह दिया। पहली नजर में दामाद बुरे आदमी नहीं लगते थे, अच्छे घरानों के मालूम होते थे, लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद उनकी बहानेबाजियां शुरू हो गई।
इसलिए
अगर फलां प्लॉट मेरे नाम नहीं करेंगे तो आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा, या मसलन अगर हमारे लिए गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो लड़की को वापस भेज देंगे। मेरा खालाजाद बेचारा इज्जतदार आदमी था, अपनी इज्जत की खातिर और इस डर से कि दामाद कहीं उनकी बेटियों को वापस ना भेज दे, उनकी हर बात मानता गया। अब मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, मैं अपने खाला साहब की तरह नहीं हूँ।
देखिए तो लोग कैसे कैसे काम कर देते हैं।
बच्चे, जानते हो इस किस्से का अखलाकी नतीजा क्या है?
क्या है?
ये है कि कहीं ये ना समझ बैठना कि तुम मुझे फरेब दे सकोगे।
अकबर साहब, मैं इन चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता हूँ।
हाँ, परवाह नहीं करते हो, लेकिन आज तुमने उसी तरह की हरकत की है।
अकबर साहब, अगर मैं हाजरा साहिबा को ना बताता और बाद में उनको पता चल जाता तो वो नाराज हो जाती, क्योंकि वो मायदा साहिबा की दोस्त है।
देखो लड़के, मैं इन चीजों को खूब जानता हूँ। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, उल्टी चिड़िया के पर गिन लेता था।
जी जी।
देखो, तुमने जाके हाजरा से कहा कि मुझे कहे कि अपनी जमीन के कागजात किसी को हवालात से निकालने के लिए गिरवी रखवाऊं। इस दफा तो मैंने हाजरा की खातिर ही काम किया, लेकिन ये समझ लो ये आखिरी दफा है, समझे तुम?
अकबर साहब, आपने खुदा के साथ सौदा किया है, खुदा उसका अज्र देगा। मैं तो सिर्फ एक वसीला था।
मैंने भी इसीलिए कहा कि तुम समझ जाओ वसीला साहब।
सलाम।
सलाम, शाबाश बरात अली।
मैंने कुछ नहीं किया, सारा कुछ तो अकबर साहब और हाजरा साहिबा ने किया है। सलाम अलैकुम।
ठीक है, लेकिन तुम्हारी खातिर किया ना?
अरे अकबर साहब मेरी खातिर क्या काम करे?
क्या हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं?
हाजरा उनके साथ हैं, सामान लेने गई हैं, अभी आ जाएंगे।
हाय खुदा, जब बरात अली ने मुझे ये बात बताई तो मेरी तो जान ही निकल गई।
सलाम।
सलाम।
सलाम। तुम ठीक हो बेटी?
सलाम।
हाजरा साहिबा बहुत शुक्रिया, खुदा आपको कोई गम ना दे।
कोई बात नहीं, ये तो मेरी दोस्त है ना।
देखो ये सब तुम्हारे कमालात
हैं। शुक्रिया।
मैं कह रहा था अकबर साहब, अगर तुम्हारी खातिर ना होता तो जमीन के कागजात तो क्या, अपना शनाख्ती कार्ड भी ना।
तुम अजीब आदमी हो, वो तुम्हारे इतने काम आए और तुम उनकी पीठ पीछे इतनी बातें कर रहे हो।
क्या तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं किया जा सकता? और हाँ, मेरा ऑफिस सील हो गया है और मैंने तुम्हारी किताबें घर ले जा करके रख दी हैं। रात को कहाँ सोओगे? चाहो तो मेरे घर आ सकते हो।
नहीं भाई, आजकल तो मैं दिन में खेतों में काम करने जाता हूँ और 2-3 रातों से मदरसे में सो रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। तुम जाओ, अपना ध्यान रखना।
मैं कहीं छोड़ दूँ?
खुदा हाफिज।
अब्बू का शुक्रिया अदा करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज।
खुदा का शुक्रिया, सब खैर खूबी से गुजर गया। तुम ठीक हो? जितना भी छोटा मोटा सामान है सबको बेचकर कर्जखाहों का मुंह बंद कर देंगे। हमारी गलती थी कि जो जमीनों को एडवांस में बेचा, ताकि ये बेचारे लोग अपने घर के मालिक बन जाएं। लो ये था।
जिन चीजों की बात कर रहे हो वो हैं क्या?
वहाँ पर हमारा बहुत सा सामान पड़ा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं और भी बहुत सारे सामान पड़े हैं, उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान पड़े हैं, मैं अपनी गाड़ी भी बेच दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उससे अच्छी गाड़ी खरीद के तुम्हें दूंगा।
आओ खाना खाओ।
उठो ना।
तुम वाकई में सोच रहे हो कि कंस्ट्रक्शन की चंद इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और अपनी गाड़ी वगैरह बेचकर उन लोगों का बिलियंस का कर्जा चुका पाओगे? और हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप को भी तो सील कर दिया गया है।
मैंने कुछ माहिरीन से बात की है, जज की इजाजत से यह काम हो सकता है, बस जरा टाइम लगेगा।
हमें थोड़ा मंतिकी सोचना होगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और हाँ, लोन का क्या बना?
मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा।
उनकी किस्तें कैसे अदा करो?
जब हम लोगों का कर्जा चुका पाएंगे तो वो इजाजत दे देंगे कि हम अपनी जमीनें वापस लेकर नए फ्लैट्स बनाने की इजाजत हासिल कर लेंगे। जो पैसा हमारे हाथ होगा उससे आसानी से बैंक की किस्तें अदा कर पाएंगे। मादा, बस तुम थोड़ा सा टाइम दो, वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा।
मैं घर जा रही हूँ।
मुझे इजाजत दीजिए।
मैं भी साथ आती हूँ।
आप कहाँ आएंगी? आपको तकलीफ होगी, सहमत ना करें।
देखती हूँ हाजी साहब क्या कहते हैं।
अगर आज रात तुम्हें रिहाई ना मिलती तो मेरी तबीयत खराब हो जाती, मैं सदके जाऊं। खुदा बेटी, मैं वाकई तुमसे और तुम्हारी बेटी से माफी चाहती हूं।
आप क्यों?
क्योंकि इन परेशानियों का सबब मेरा बेटा बना है और मैं भी तो माजरत खाही के अलावा कुछ नहीं कर सकती।
अबू जान कहाँ है?
वो थाने से सीधे मदरसे गए, वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहते थे।
तुम मेरे साथ चल रही हो?
बेटी ये कहाँ जाएगी, सुबह से परेशान है, थकी हुई है, अपने घर में सुकून से रहेगी। तुम भी रुक जाओ, खाना खाते हैं, उसके बाद मोहम्मद हुसैन पहुंचा देंगे।
नहीं, मैं थकी हुई हूँ, चलती हूँ।
जैसी तुम्हारी मर्जी, रुक जाती तो बेहतर था।
मैं सुबह तक यहीं रहूंगी ताकि अब्बू जान आ जाए।
ठीक है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
सारी रात किताब के वर्क पलटते रहो ताकि हम ना सो सके, उसके बाद मोबाइल को कमरे में ऑन छोड़ो ताकि हमारा दिमाग खाए। ये लो अपना मोबाइल।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
हेलो, सलाम हजरत साहब, तुम ठीक हो? तुमको भी सुबह खैर हो। जी जी, जाग गया हूँ। तुमने नमाज पढ़ ली क्या? तो सो जाती? इल्तमास दुआ, खुदा हाफिज। मुस्लिम भाई माफ़ करना, मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है कि बाज़ असातिज़ा और तलबा क्यों बैठे बैठे सो जाते हैं। असल में उनके पास टाइम की कमी होती है, इसलिए ऐसा होता है।
शादी टल गई है फिर भी सुबह सुबह एक दूसरे की जान नहीं छोड़ रहे हो, इतनी सवेरे कहाँ जा रहे हो?
मैं खेतों पर जा रहा हूँ ना।
अरे भाई, तुम तो कल रात सोए ही नहीं।
मैं क्या करूँ, शादी करनी है तो काम पर तो जाना ही पड़ेगा।
आखिर कौन समझदार इंसान इतने सवेरे खेतों पर जाता है?
कुछ अरसे तक मैं सही तरह से काम पर नहीं जा सका। आखिरकार उनको भी समझ जाना चाहिए कि मैं काम का बंदा हूँ, काम कर सकता हूँ।
काम के बंदे हो लेकिन हाजी अहमद अली से डरते हो?
देखो मुस्लिम, अगर मेरे अब्बू सुबह की नमाज के लिए आए तो उनसे ये मत कहना कि मैं यहाँ पर सोया था। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज।
जुफ दिनों में तुम्हें यहाँ आना होगा, खेतों को पानी देना होगा, और डेढ़ घंटे के बाद जब पानी दे दिया तो पानी बंद करना होगा।
जी ठीक है।
याद रखना, अगर डेढ़ घंटे के बजाय एक घंटा और 35 मिनट हो गए तो काम खराब हो जाएगा।
जी जी
हाँ। अब जाके उस तरफ के लोगों को चेक करो, देखो कि जमीन को अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर रहे हैं कि नहीं, कि हवा लगे। यहाँ तक कि तुम भी जाकर उनकी मदद करो। 6 महीने पहले तक मैं खुद जाकर बेलचा लेकर उनकी मदद करता था। पिछले 40 सालों से जब से ये जमीन मेरे पास है, हमेशा मेरे हाथ में बेलचा रहा। इन पिछले 6 महीनों में जब भी मैं सोता हूँ, ख्वाब देखता हूँ कि मेरे हाथ में बेलचा है और बेलचे के साथ में जमीन पर काम कर रहा हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी।
कोई बात नहीं अबू जान,
खुदा उसे और उसकी फैमिली को जजाए खैर दे। बरात अली का भी भला हो जो वसीला बना कि ये मुश्किल किसी तरीके से हल हो जाए। तुम्हें बहुत दुख पहुंचा मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना।
ये आप कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये लीजिए।
अलैकुम सलाम।
सलाम।
दुनिया के इम्तिहानात का जाहिर के अलावा एक बातिन भी होता है, और वो ये है कि अल्लाह ताला उनके ज़रिए अपने बंदों को आजमाए, और बंदों को भी साबिर रहना चाहिए, ख़ास तौर पर मुश्किल हालात में लोगों के साथ बद अखलाकी ना करे। खुशी और खुशहाली बिल्कुल एक परवाने की तरह होती है, अगर इंसान धोखे से उसको हासिल करना चाहे तो वो भाग जाता है, लेकिन अगर सब्र व तहम्मुल से काम ले तो वो खुद आके कंधे पर बैठ जाता है।
खुद पे कंट्रोल नहीं कर सका।
नफ्स की लगाम को अपने हाथ में लेना चाहिए, इंशाल्लाह खुदा मदद करेगा ताकि ये कर्जा चुका सको। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा।
शुक्रिया अब्बू जान, लेकिन मुझे बहुत लगता है कि कंपनी का कर्जा इतनी आसानी से चुका पाएंगे।
अगर खुदा हमारी मदद करना चाहे तो क्या उसके खजानों में कमी आ जाएगी? तुम्हें बस सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि ये मुश्किलात तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात पैदा ना करें। हाजिया साहिबा नहीं आ रही?
अभी आ जाएंगी। क्या तुम उस कंपनी में काम नहीं करते हो जो कहते हो कि तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है?
अम्मी जान, मैंने कंपनी के तमाम काम मोहम्मद हुसैन के सुपुर्द किए थे, वो भी सभी काम ठीक कर रहा था, तो आप ही बताइए मैं दखल क्यों देता?
बेटे, मैं इन्हीं दिनों के लिए कहती थी कि एमए कर लो, यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ लो।
इसका आपस में क्या रब्त है? अगर मैं एमए कर लेता तो कंपनी बच जाती।
नहीं, इतनी खुद एतमादी होती कि वहाँ के हालात से बाखबर रहते।
जी खाला।
क्या कर्ज खाओं की लिस्ट यही है?
जी।
उनका वकील कह रहा था कि 90% ने शिकायत की है कि उनको अपना पैसा चाहिए।
ये लीजिए।
बेचारे कितने डर गए हैं।
बेचारे क्यों, हम उनका पैसा खाना चाहते हैं क्या?
नहीं खाना चाहते, लेकिन क्या उनको देने के पैसे हैं?
जी अब्बू।
दाऊद साहब को आने दो, देखते हैं क्या कर सकते हैं।
साफ जाहिर है कुछ नहीं किया जा सकता।
मैं अबू को लाने जा रहा हूँ।
ठीक है, जल्दी वापस आना।
सारी गलती मुझ बेवकूफ की है।
तुमसे क्या ताल्लुक है?
क्योंकि मैंने ही मोहम्मद हुसैन से कहा था कि वो ये कंपनी खोले, वो तो वही अपनी छोटी मोटी आमदनी पर राजी था।
तुमने तो मजबूर नहीं किया, वो खुद समझदार था, ना मानता। अलबत्ता अगर उसकी जगह मैं भी होता तो मान लेता, काम में रिस्क लेना ही पड़ता है। ये क्या कि इंसान बस सुबह ऑफिस जाए और कार्ड लगाए और रात को वापस आए, ऐसे काम का कोई मजा नहीं।
पर ऐसे काम का भी क्या फायदा जिसमें इंसान की बीवी जेल चली जाए और बाप मुंह मोड़े। मोहम्मद हुसैन बेचारा सिर्फ मायदा पर भरोसा कर सकता था, वो भी उससे अब सख्त नाराज है।
इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
आप भी तो सिर्फ इंशाल्लाह और माशाल्लाह कहते रहते हैं अबू।
क्या है, तुम्हारा मकरूद हूँ?
नहीं नहीं,
तुम्हारी बेवकूफी से अब तक मुझे 500 लोग फोन कर चुके हैं कि हमारे पैसे का क्या होगा।
अबू आप उनको भी वही जवाब दे देते जो मुझे देते हैं, कह दें कि आरश का हिसाब किताब अलग है।
वो तो सब अपनी जगह है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि अगर इस मामले में मेरा नाम लिया जाएगा तो मेरे काम को नुकसान होगा, समझते हो?
जी जी।
शाबाश। जैसे ही मैं तेहरान पहुंचा, मैंने मुरादी का सुराग लगाया कि कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है, और हर दोस्त व आश्रा से पूछा कि शायद इसका कोई पता चल सके। मैं नहीं जानता, शायद गलती मेरी ही थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में तुम लोगों को लगा दिया। ये तुम्हारे बस का नहीं था, तुम लोग पहले छोटे मोटे प्रोजेक्ट में हाथ डालते, फिर तजुर्बा होने के बाद बड़े काम में हाथ डालते।
खाक हो मेरे सर पर, मुझे शुरू से ही ये कंपनी मायदा के नाम नहीं करनी चाहिए थी।
फिलहाल तुमने दोस्ती का ख्याल रखा, इस जमाने में कौन ऐसी कंपनी के लिए जान जोखिम में डालता है जो उसकी बीवी के नाम हो। सूबे के पुलिस ऑफिसर ने हुक्म दिया है कि जहां भी मुरादी मिले उसको गिरफ्तार कर लो। अच्छा, तुम्हारे खाला हुदा कैसी है?
बेचारी भाग दौड़ में लगी हुई है ताकि पैसा इकट्ठा करके कर्ज उतार सके।
बेचारी, वो खुद ही मुश्किल में फंसी हुई है, पैसे का बंदोबस्त कहां से करेगी?
मैं क्या जानू।
हमीद, मोबाइल सेट को मैसेंजर से हटा दो, तुमसे काम है। हेलो हमीद, अम्मी कल से मुसलसल रोए ही जा रहे हैं, ये क्या कर डाला तुमने हमीद। ये पैगाम सुनते ही अब्बू की कब्र पर जाना हमीद, अम्मी वहीं पर हैं, वहां तुम्हारी मुंतजिर हैं। काश मैं देखता कि तुम उनसे कैसे रूबरू होते हो। हेलो सलाम मिर्जाई साहब, माफ कीजिएगा आप कब आएंगे? जी ठीक है। हाजी साहब वो बस आने ही वाले हैं, आप लीजिए कुछ नोश।
जी शुक्रिया। अच्छा, ये मिर्जाई साहब काम क्या करते हैं?
वो असल में तिजारती काम में मशगूल हैं, हर तरह की दालें, ड्राई फ्रूट्स, चावल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं।
मैं समझ रहा था कि वो कालीनों का कारोबार करते हैं।
कालीनों की तिजारत भी करते हैं। उनका ख्याल है कि इंसान को अपना सरमाया किसी एक काम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एक काम में नुकसान हो गया तो दूसरे काम में फायदे के चांस रहते हैं।
खुदा उनको जजाए खैर दे, बहुत समझदार आदमी हैं।
जी हाँ। लीजिए हाजी साहब, तकलीफ ना कीजिए। लीजिए आ गए मिर्जाई साहब।
सलाम अलैकुम।
सलाम मेहदवी साहब का तारुफ कराने की जरूरत तो है ही नहीं।
जी जी।
वाह वाह वाह। अलैकुम सलाम। वाह
माशाअल्लाह हाजी साहब, हमने मुख्तलिफ चैनल्स में इतना आपको देखा है कि जैसे हमेशा आपके साथ रहे हो।
आपकी इनायत है। ये बताएं सफर कैसे गुजरा?
माफ कीजिएगा, मैं खुद आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आ सका, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। जहां आप हैं वो जगह पसंद है?
खुदा का शुक्र है सब ठीक है।
जिस स्वीट में आप ठहरे हैं ये यहाँ की बेहतरीन जगहों में से एक है जिसका हम आपके लिए इंतजाम कर सके। बहरहाल इतनी ही हैसियत थी, अगर किसी चीज की कमी हो तो माफ कर दीजिएगा।
माफ कीजिएगा हाजी साहब, अपने मखसूस कमरे में नहीं गए।
अरे क्या मतलब?
दरअसल मैं इस अरसे में गुलशनाबाद के मदरसे में हाजी शहीदी साहब की खिदमत पे रहना चाहता हूँ। मैंने सोचा इस अरसे में मदरसे के नज़दीक रहूँ ताकि हाजी साहब के अखलाकी दुरुस्त से कस्बे फैज करूँ।
जी जैसी आपकी मर्जी।
जी शुक्रिया।
भाई मजीद।
जी।
जरा मस्जिद जाके खबर देना कि मैं और हाजी साहब दोनों मस्जिद आ रहे हैं, तैयार हो जाएं।
जी जी।
अब मैं क्या कह सकता हूँ?
मैंने सोचा जल्दी आपसे मिलके एक मसले के बारे में बात करूं, इस मसले ने मेरे जहन को बहुत परेशान किया हुआ है।
इंशाअल्लाह के खैर है,
मुझे कल इत्तेफाक से हाजी शहीदी साहब की बहू के साथ पेश आने वाली मुश्किल के बारे में पता चला। लगता है वो जमानत का बंदोबस्त नहीं कर सके और हवाला से नहीं निकाल सके। क्या आपको इस मसले के बारे में इत्तला है?
जी, मुझे फोन पर पता चला। एक तालिबे इल्म के ससुर ने कागजात का इंतजाम कर दिया था, मायदा साहिबा को आजाद करा लिया है, आप फिक्र ना करें।
मीरजाई साहब, इस किस्से के पीछे कौन है?
खुदा जानता है। जाहिर में बात यह है कि आबनमा कंपनी कसूरवार नहीं है, पर बातिन में क्या है ये मुझे नहीं मालूम।
यानी जैसे कि लोग कह रहे हैं कि क्या मुमकिन है कि मोहम्मद हुसैन ने अपने वालिद के नाम का गलत फायदा उठाया हो?
वल्लाह, मेरा तो अपना बेटा भी इस केस में फंसा हुआ है, मैं क्या कह सकता हूँ।
अल्लाह हू अकबर।
लेकिन मैं इस बारे में कोई कजावत नहीं कर सकता। अजान का वक्त नजदीक है, अगर आप हुक्म दें तो मिलकर मस्जिद चलते हैं। मस्जिद के इफ्तिताह के लिए बाजार के ताजिरों को भी बुलाया गया है।
बिस्मिल्लाह, चलिए।
जी चलिए।
अरे हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए,
जल्दी करो। सैयद, ये ले जाओ।
आइए आइए।
बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको जज़ाए खैर दे।
हाजी साहब, देखा आपने लोगों को कितना इश्तियाक है कि ये मस्जिद जल्द से जल्द खुले। इंशाल्लाह अगर आप भी मेहरबानी करके खुद ही एक तरह से इस मस्जिद के मैनेजमेंट को खुद संभालें तो फिर तो ये नूरन अला नूर हो जाएगा।
जी ठीक है, इंशाल्लाह। बस आपसे एक गुजारिश करनी थी।
जी फरमाइए।
देखिए, इतनी मेहरबानी कर दें कि एक दो जगह लिख के लगवा दें कि जब मैं तकरीर कर रहा हूं तो कोई वीडियोग्राफी ना करे।
जी जी, जरूर जरूर। लेकिन क्यों?
अब की बात नहीं है, बाद में, इसलिए कि शायद कुछ लोग मेरी आधी बातें रिकॉर्ड करके दूसरों तक पहुंचाएं और लोग उलमा के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएं। कुछ अर्सा पहले ब्लूटूथ पर मेरा एक क्लिप फैलाया गया कि जिसमें मैंने ये कहा था कि पैंट कोट पहनना शरण दुरुस्त नहीं है। ये क्लिप हर बंदे के पास पहुंचा और हर किसी ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इन खुदा के बंदों को क्या मालूम कि मैंने इससे पहले और बाद में क्या कहा।
आप सही फरमा रहे हैं, आप बेफिक्र रहे हैं। सर आंखों पर सलवार। सलाम।
सलाम, आप फोन का जवाब क्यों नहीं देते?
क्या तुमने फोन किया था? मैं वाकई में माफी चाहता हूँ।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम। मोबाइल जेब में पड़ा हुआ था, शोर की वजह से पता नहीं चला।
यानी इन हालात में आपको मस्जिद के इफ्तिताह के अलावा और कोई काम नहीं है?
अरे भाई, गुस्से में क्यों हो?
गुस्से में हूँ क्योंकि मायदा का मसला दरपेश है।
खुदा का शुक्र है, उनकी मुश्किल तो फिलहाल हल हो गई है।
मायदा लोगों के कागजात की बरकत से बाहर आई है। कितना पैसा जोड़ सकते हैं ताकि कर्ज खाहों का कर्ज चुका दें?
मैं आज ही जाके अपने घर के कागजात रखवा के इस खुदा के बंदे के कागजात वापस कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें।
हमें कागजात की जरूरत नहीं है, हम दोनों को ये देखना है कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है।
खुदा खानुम, आपकी बेटी और दामाद का कर्जा बहुत ज्यादा है, इन छोटी मोटी रकमों से हल होने वाला नहीं है।
अच्छा, तो अब आप इसको मेरी बेटी और दामाद का कर्जा कह रहे हैं। कंपनी का तीसरा हिस्सा आरश के नाम है, आपको भी कम से कम एक तिहाई कर्जा चुकाना होगा।
मेरे पास पैसा होता तो सारा कर्जा चुका देता। अगरचा मैं जानता हूँ कि इस मसले का आरश के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता।
क्यों ताल्लुक नहीं बनता? जितना इस केस में मोहम्मद हुसैन और मायदा कसूरवार हैं, उतना ही आरश भी है।
अलबत्ता ये सब चीजें कानूनी मसाइल हैं। लेकिन तुम जरा ये बताओ, अगर इस कंपनी को मुनाफा हुआ होता तो क्या आरश एक तिहाई मुनाफे में शरीक होता जो अब उसे नुकसान में शरीक होना चाहिए? मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, हकीकत यही है। अभी आया, मुझसे जो भी हो सका मैं उनकी मदद करूंगा।
आरश चलो।
सलाम अंसारी
साहब। लगता है यहाँ किसी को भी मायदा की फिक्र नहीं है।
अबू ने क्या कहा? सलाम। सलाम।
वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं आप? ठीक हैं। देखिए अंसारी साहिबा मेरी खाला हैं, जनाब मोहम्मद हुसैन शहीदी की सास। आपसे बस एक दो मिनट बात करनी थी।
जी तशरीफ रखिए, मैं आता हूँ।
चलिए उधर से।
फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ?
मैं उस लोन के बारे में पूछना चाहती हूँ जिसकी इन लड़कों ने दरखास्त की थी। किन दफ्तरी मराहिल में है?
किस चीज की दफ्तरी मराहिल?
वो लोन जिसके लिए आबनुमा कंपनी ने दरखास्त की थी।
मैंने शहीदी साहब को तो बता दिया था कि आपको लोन नहीं मिल सकता।
नहीं मिल सकता?
کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ ہم کسی ایسی کمپنی کو لون دے دیں جس کا کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے؟ یوں ہی گھاس پھوس کی طرح اگائی ہے، جس کا کوئی روشن مستقبل نہیں ہے اور اس پر دھوکہ دہی کا الزام ہے۔
لیکن محمد حسین نے کہا تھا چند ہی دنوں میں لون پاس ہو جائے گا۔
ممکن ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کہا ہوگا، بس ویسے ہی جیسے انہوں نے دوسروں کو جھوٹی امید دلائی ہے۔
تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
دیکھیے محترمہ، آپ میری بات سنیے، اس لون وغیرہ کے چکر میں آپ بالکل مت پڑیے۔ ابھی اس شہر میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کمپنی کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ 6 سال پہلے بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، ان لوگوں نے بھی لون لینے کی کوشش کی تھی، انہوں نے بس اپنا وقت برباد کیا تھا اور ایسا کچھ کر بیٹھے کہ ابھی تک جیل میں ہے۔
میں کہتا ہوں مائدہ کو لے کے چپکے سے ایران سے نکل جائیں۔
وہ کوئی کھلونا ہے جو جیب میں ڈال کے لے جاؤں؟
میرا مطلب غیر قانونی طریقے سے، کچھ پیسے لے کر لوگ آسانی سے بارڈر پار کرا دیتے ہیں۔
تو جس نے اپنی جائیداد کے کاغذات ضمانت کے لیے رکھوائے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ محمد حسین کا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا ہوگا؟ ذرا سوچو۔ نجمہ آنٹی سے بات کرنی ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم مدرسے میں اس سعادتی لڑکے کو جانتے ہو؟
جی، طالب علم ہے۔ کیوں؟
مدرسے چلو، بتاتی ہوں۔
یہ لیجیے جناب۔
بہت شکریہ۔
کوئی بات نہیں، سفر بخیر۔
خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
تمہارے والد نے کہا تھا کہ تمہارے ذریعے پوچھواؤں کہ کیا میرے پروجیکٹ کے لیے بجٹ دلوا سکتے ہیں۔
جی، اتفاقاً انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ آپ پروجیکٹ کا پروپوزل مجھے دیں تاکہ پہلی فرصت میں ان تک پہنچاؤں اور ان کے دیکھنے کے بعد نتیجے سے آپ کو آگاہ کروں۔
آپ کے خیال میں اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کیونکہ ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے۔
دیکھیے، اگر یہ پروپوزل تحقیقاتی کمیٹی میں غور کے بعد تصویب ہو گیا تو پھر اس کو بجٹ الگ کرنے کے لیے بھیجیں گے، اور پروجیکٹ میں پیش رفت کے مطابق ہی آپ کو پیسہ ادا کیا جائے گا۔
تقریباً کتنا ٹائم لگے گا؟
دیکھیے انصاری صاحبہ، چونکہ آپ کا پروجیکٹ بہت بڑا ہے اور اس کا پیسہ فورن کرنسی میں دیا جائے گا، تو بین الاقوامی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 مہینے تک لگیں گے۔
6 مہینے بہت زیادہ ہیں، اور قسطوں میں پیسہ دینے سے میرا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔
آپ مہربانی کر کے فائل مجھ تک پہنچائیں تاکہ میں جلدی سے ابو تک پہنچاؤں اور وہ اس پر کام شروع کریں۔
چلیں۔
شکر گزار۔
کوئی بات،
فرید صاحب آپ کا
اجازت دیں۔ انصاری صاحبہ، آپ نا امید نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا۔ کام سستی سے آگے بڑھتا ہے لیکن نتیجہ ضرور دے گا، خدا پر توکل رکھیں۔
شکریہ،
اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
معاف کیجیے گا آپ کو زحمت دی پھوپھی جان۔
ایسی کوئی بات نہیں بیٹی، آؤ ادھر بیٹھ جاؤ۔ ایسا مت کہو بیٹی، میرا تو تمہیں دیکھ دیکھ کے دل نہیں بھرتا۔ میں صدقے جاؤں،
مجھے بھی آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔
کاش تم جان سکتی کہ میں نے کتنی منتیں مانگی کہ تم ماں بیٹی کے تعلقات اچھے ہو جائیں، اور جب تک یہاں ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش رہو، لیکن یہ مصیبت سر پہ آ گئی۔
میں بھی ہر چیز کا سوچ سکتی تھی سوائے اس کے کہ آگے مائدہ کو حوالات سے نکالنا پڑے گا۔
تم بے فکر رہو، حاجی صاحب کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔
کیسے پریشان نہ ہوں؟
خدا پر توکل رکھنا چاہیے۔
ٹھیک ہے کہ انسان کو خدا پر توکل رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے۔ میں نے پوری رات سوچا، داؤد اور آرش کے ساتھ بھی بہت بات کی، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ ان بچوں کا قرض چکا دیں۔
ایسی باتیں نہ کرو، خدا جب انسان پر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو یقین رکھو کہ اس کے لیے دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کی رحمت پر تم شک نہ کرو بلکہ یقین رکھو۔
سچ تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔
خدا تمہارا بھلا کرے، تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ ایک راستہ ہے، حاجی صاحب بھی یہی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔
گلشن آباد کی زمینوں کو بیچنا ہوگا۔
کہاں کی زمینیں؟
گلشن آباد کے باغات اور مدرسے کی زمین کو۔
یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ گلشن آباد کی زمینیں بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟
یہ کاغذات ثابت کرتے ہیں کہ جو زمینیں ابو نے شہیدی صاحب کو زراعت اور مدرسہ بنانے کے لیے دی تھی، جو میری امی کے نام تھی، ابو کے نہیں۔ مطلب یہ کہ خود ہبا میں مشکل ہے۔
یہ تو بتاؤ، کیا تم ابھی اپنی زمینیں واپس لینے کے لیے آئی ہو؟
نہیں، میں اپنی زمینوں کو بیچ کر مائدہ کا قرضہ چکانا چاہتی ہوں۔ بعید لگتا ہے کہ آپ اور حاجی صاحب بھی اس بات پر راضی ہوں گے کہ محمد حسین کی بیوقوفیوں کی وجہ سے مائدہ ساری عمر جیل میں کاٹے، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ یہ بات حاجی صاحب سے کہیں۔
کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ بات میں حاجی صاحب سے کہوں؟ تم خود کیوں نہیں کہتی؟ تم خود کہو۔
اینجا برای سنوشتن هوا کمه.